शांति। तो हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी भावना दीदी जी पहुंचे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भावना दीदी गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल पड़े और फिर अपनी पढ़ाई पढ़ते रहे। 1980 में टीचर्स ट्रेनिंग की और एक दो वर्ष तक भारत की धरनी पर, गुजरात की धरनी पर रहकर सेवाएं दी और फिर तो बाबा ने आपको 1982 में विदेश सेवाओं के लिए सेलेक्ट किया। तो करीब 40 वर्षों का विदेश सेवाओं का आपके पास अनुभव है, जिसको हम कहेंगे कि विदेश 40 पूरा किया है। हाँ, 82 से 2022 तो विदेश 40 जिन्होंने पूरा किया है, न्यूजीलैंड और फिजी में बेस्ड हैं। वहाँ के जितने भी सेवा केंद्र हैं उनका आप निर्देशन करते हैं, वहाँ के आप डायरेक्टर हैं, लेकिन साथ साथ पूरे ही विश्व भर में भ्रमण करते हैं और बाबा के बच्चों की सेवाओं में सदा हाजिर रहते हैं। आज भी हमारे बीच में हाजिर हैं। आज पहला दिन है, भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताने आए हैं। जैसे कहा कि लक्ष्य उद्देश्य तो बहुत सुंदर है लेकिन बड़ा है, बाप समान बनना है, लेकिन बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो दीदी को हमने टॉपिक दिया है संगम युग और पुरुषार्थी जीवन का महत्व। इस विषय को स्पष्ट करते हुए दीदी भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य भी हमें जरूर बताएंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज का टॉपिक तो आप सभी जानते ही हो, संगम युग की। बाबा कहते महिमा अपरंपार है, बाबा की भी महिमा अपरंपार है, तो बाबा के बच्चों की भी महिमा अपरंपार है, भारत देश की भी महिमा अपरंपार है। तो यही संगम युग, सुहावना कल्याणकारी युग, जिस पे बाबा ने आकर के हम सबको सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है। यही तो समय है जो बाबा से सर्व प्राप्तियों का हम अनुभव करते हैं। यही तो संगम का समय है जब हम सदैव बाबा की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। आप सब ने अपने जीवन में अनुभव तो किए ही होंगे कि कैसे बाबा हर समय हमारी छत्र छाया बन करके रहते हैं। तो एक छोटा सा अनुभव मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करना चाहूंगी कि एक समय की बात है, मैं किसी देश में टूर कर रही थी, तो हॉट कंट्री थी, गर्मी थी, तो गर्मी में जनरली ये बारी वगैरह हम लोग खुला रखते हैं ना। तो रात का समय था, शाम को सेंटर में प्रोग्राम था, प्रोग्राम पूरा हुआ, सभी भाई बहने चले गए, फिर अबाउट 9:30 रात को मैंने बाबा से गुड नाइट किया और फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई। इन अबाउट आफ्टर मिडनाइट 12:30 ऐसे हुआ होगा, तो मेरे को स्वप्न आ रहा है, ड्रीम या तो ड्रीम में मैं क्या देख रही हूं कि जहां पर मैं रह रही थी, बाबा का ऑफ कोर्स बाबा का घर था, तो बाबा के घर में एक पोइजनस जहरीला सांप उसने एंटर किया है और धीरे धीरे वो पैसेज में मूव हो रहा है। तो जैसे ही मेरे को सांप का सपना आया तो मैं तो जंप करके खड़ी हो गई खटिया में से, क्योंकि बचपन से मुझे सांप इतने पसंद नहीं थे। इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसे देश में रखा है जहां सांप ही नहीं है। तो जैसे ये स्वप्न आया तो मैं खड़ी हो गई, तो ये विंडोज वगैरह ओपन थे तो मैंने बंद कर दिया, फिर लाइट ऑन करके सब कोने चेक किए, एवरीथिंग वाज ओके। फिर बाथरूम में जाकर के भी देख के आई, क्योंकि याद है दादी प्रकाशमणि ने अपना अनुभव सुनाया था बहुत समय पहले कि सांप वो कमोड के अंदर में बैठा था। तो मैं सारा चेक करके आई, कुछ था नहीं। फिर मैं ऐसे ही खटिया पर बैठ गई, फिर मैं सोचने लगी कि वो तो ड्रीम था, है? सारे ड्रीम कोई सच थोड़े होते हैं। तो ऐसे करके मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही लेटे लेटे मेरी दृष्टि पैसेज की तरफ गई, तो पैसेज में मैंने कुछ हिलता हुआ देखा, फिर खड़ी हो गई, फिर जा करके लाइट ऑन करके देखा, तो वो जो स्वप्न में मैंने जो सांप देखा था ना, वही वाला सांप वहां पर था। या और मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार लाइव जिंदा सांप देखा था, तो मुझे नहीं पता कि इसको कैसे हैंडल करना होता है। और भी दो तीन बहनें थी, क्योंकि इट वॉज आफ्टर मिडनाइट ना, तो सब सो रहे थे गहरी नींद में, लेकिन मुझे बुलाना पड़ा है। तो फिर दो बहनें आई दौड़ती दौड़ती मेरे रूम में, कहती सिस्टर क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, ये विजिटर आए हैं एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल। तो कहती है उसके पास युक्ति थी, या तो एक बहन दौड़ करके कैरोसिन ले आई, या तो कैरोसिन को मेरे रूम के आगे आगे ऐसे छाट दिया, क्योंकि जो सांप होते ना उनको कैरोसिन की स्मेल नहीं पसंद आती है। तो जैसे उसने वो छिड़का तो सांप ने टर्न कर लिया और वो दूसरी दिशा में जाने लगा, तो वहीं पर डोर था है, तो दरवाजे से वो निकल गया। फिर वो बहन मेरे को कहने लगी कि सिस्टर हमारे देश में तो कभी कभी ये आ जाते हैं, लेकिन हम एक ध्यान रखते हैं कि जब भी वो आता है ना हम उसको मारते नहीं हैं। अगर उसको मारा तो उसका पार्टनर आपको ढूंढता ढूंढता आएगा। तो जब भी आता है तो हम ऐसे भेज देते हैं, या तो आप देखो। मैंने उसको पूछा ये किस प्रकार का था, तो इन लोगों को पता होता है, देख के ही मालूम चल जाता है। तो उसने सुनाया कि सिस्टर वो तो पॉइजनस वाला था, या तो आप देखो राइट टाइम पर नहीं, बाबा ने उठवा भी दिया और अपना काम करवा भी लिया। या तो ऐसे बार बार हम सब बाबा के बच्चे ये अनुभव करते हैं कि जैसे हम सब बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं, है? बाबा हर पल हमारी ये संगम युग में रक्षा करते हैं। तो ये संगम युग में बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, है? तो कुछ बातों के पर अगर मैंने थोड़ा अटेंशन रख लिया तो फिर हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलेगा, और हमारा जो लक्ष्य है बाप समान बनना, इस पुरुषार्थी मार्ग में आगे बढ़ना, उस लक्ष्य को हम अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। या तो वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं कि हमें अपने संग के पर बहुत ध्यान रखना है। जैसे कहावत है ना कि सत संग तारे कुसंग बोरे, तो किसका संग हमें करना है, तो बाबा कहते संगम युग में हमें सात प्रकार का सत्संग करते रहना है। तो इससे क्या होगा, हमारा मन बुद्धि दोनों बिजी हो जाएगा अच्छे कार्य में, तो कोई भी वेस्ट को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। या तो पहला सत्संग बाबा कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, या मेडिटेशन में बैठते हैं बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को के साथ ही तो हमारा संबंध ठीक होता है ना, बाबा को ही तो हम उतना प्यार से याद करते हैं। तो देखो मेडिटेशन में बाबा के साथ मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो रिलेशनशिप है, एक तो मेरा नजदीक का होना चाहिए, दूसरा हेल्थी होना चाहिए। या ये दो बातें अगर मेरी है तो मेरा बाबा से योग बहुत अच्छा रहेगा। या और बाबा, आप देखो चार अक्षरों का ये लेटर बना हुआ है बाबा, बी ए बी ए, फर्स्ट बी माना बार बार बाबा का हर कार्य में आवाहन करते रहे। कुछ भी कार्य करते हैं तो बाबा नहीं चाहते कि हम अकेले करें, बाबा इन्वॉल्व होना चाहता है हमारी हर एक्टिविटी में। तो बार बार उसका आवाहन करें, चलो खाना बना रहे हैं, बाबा को इनवाइट करें, ओके बाबा कम, हम दोनों मिल करके ये काम करते हैं, चाहे ड्राइविंग करते हैं, बाबा को इन्वोक किया तो फिर बाबा रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक बार का मेरा एक अनुभव है कि मैं कहां कनाडा में कहां टूर कर रही थी, तो एक सेंटर पर थी, तो वो सेंटर में जो बहन रहती थी उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। या जब भी हम उसकी गाड़ी में बैठते थे तो वो कभी भी इंजन फटाफट स्टार्ट नहीं करती थी, सबको कहती थी पहले 2 मिनट आप बाबा को याद करो, उसके बाद इंजन ऑन होगा। या और फिर क्या हुआ, मेरे को जाने का था 3 दिन के बाद दूसरे शहर में, तो यही बहन थी जो मेरे को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वाली थी, और वो दिन गुरुवार का था, और गुरुवार को तो हम सब जानते हैं ना थोड़ी लंबी चौड़ी विधि होती है हर रोज की तुलना में, तो वो सारा काम पूरा करते करते भोग देते देते मैं थोड़ा लेट हो रही थी। या तो फिर उसकी गाड़ी में बैठी, फिर कहती है सिस्टर रिमेम्बर बाबा 2 मिनट वो कार स्टार्ट नहीं करे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कल्याण ही होगा। तो फिर हम सब बाबा को याद करने बैठे, उसके बाद उसने इंजन स्टार्ट किया, मेरे पास खाली 15 मिनट बचा था, उसमें मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था और रास्ता था अबाउट 25 मिनट का। लेकिन मैं आपको वंडरफुल बात ये बताऊं कि जैसे बाबा को हम इन्वोक करते हैं ना हर कार्य में, तो थ्रू आउट रास्ते में कहां पर भी रेड लाइट में खड़ा नहीं होना पड़ा, ऑल द वे ग्रीन लाइट रही, या राइट टाइम पर मैं पहुंच भी गई। या तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हर कार्य में हम इनवाइट करें तो बाबा आएगा। दूसरा लेटर है ए, ए माना अमृत वेला मेरी बाबा के साथ पावरफुल होनी चाहिए। अमृत वेला हम सब पुरुषार्थ करते हैं, या कभी कभी हमारी अच्छी भी होती है, कभी हमारा बिजी दिन होता है तो थोड़ी स्लीपी वाली भी होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मेरा अमृत वेला अच्छा हो, क्योंकि वही तो टाइम है भोलानाथ अपने भंडारे खोल के बैठता है ना, वही टाइम है जितना बाबा से चाहिए उतना हम ले सकते हैं, और बाबा भी वही टाइम एब्सोल्युटली फ्री है, है? और माया भी आप देखो वही टाइम फ्री होती है, नहीं रात को सोने जाते हैं ना बाबा को बोल के जाते हैं ना कि बाबा 4:15 बजे उठा देना, है? बाबा 3:30 बजे आपकी खटिया हिला देगा, आपको भी हिला देगा, हम सब कभी कभी अनुभव करते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे बाबा उठा के जाता है ना, फिर वो आंटी माया आती है, मासी रही है ना 63 जन्मों की, तो फिर वो आकर के अपनी मुरली शुरू कर देती है। बाबा की मुरली तो कितना बजे होती है, 6, 6:30 या 7 बजे होगी, लेकिन माया की मुरली अमृत वेला शुरू हो जाती है 4 बजे है? कि भाई सो जा, आज तो तेरे को हेडेक हो रहा है, है? सो जा, आज तबीयत तेरी ठीक नहीं है, आज तेरा बहुत बिजी डे है या? और वो भी 63 जन्म की मासी रही हुई है ना, कभी कभी हम सुन लेते हैं उसकी बातें भी या? फिर क्या होता है, बाद में जब बाबा की बातें सुनते हैं ना, तो अंदर में ठीक फील नहीं होता कि आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया या? तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि अमृत वेला मेरा पावरफुल चाहिए। तीसरा लेटर आता है बी, बी ए बी, बी मीन्स बार बार बाबा का शुक्रिया अदा करे। अब तो दिल से नेचुरली निकलता है, कुछ भी काम अच्छा होता है तो निकलता है ना, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा है, तो बाबा को तो थैंक्स करे ही करे, साथ ही साथ अपने आप को भी थैंक्स करे, इस शरीर को भी थैंक्स करे, क्योंकि शरीर हमारा कलयुगी 5 तत्वों से बना हुआ है ना, तो कभी कभी शरीर हमारा पुरुषार्थ नहीं करने देता। इसलिए दादी जानकी हम लोगों को कहती थी कि मैं रोज दिन में एटलीस्ट 10 मिनट इस शरीर को सकाश देती हूँ, ताकि ये शरीर मेरा पुरुषार्थ में मेरा सहयोगी बने और पुरुषार्थ करने में मददगार बने या? तो शरीर को भी थैंक्स देना है, सबको थैंक्स दो, प्रकृति को भी थैंक्स या? तो ये है बार बार थैंक्स करने की आदत। और चौथा ए है एम एन ऑब्जेक्ट, कि भाई बाबा के पास हम किस लिए आए हैं। आप सब लोग टाइम निकाल के भट्टी में भी तो आए हो ना, किस लिए भट्टी में आए हैं, कोई विशेष अनुभव करने के लिए, कुछ अंदरूनी थोड़ा वर्क करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए या? तो ये है एम एंड ऑब्जेक्ट को बार बार याद रखना है, लक्ष्य, कि भाई मेरा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, मेरा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो वो जितना जितना हमारे सामने होगा ना, उतना उतना नेचुरल वो क्वालिटीज हमारे में आती जाएगी। ठीक है, तो बाबा के साथ सत्संग में ये 4 बातें याद रखनी है। फिर ज्ञान का सत्संग भी करना है, यानी जो बाबा की बातें सुनते हैं ना, उसके ऊपर विचार सागर मंथन, तो अंदर से नई नई पॉइंट्स इमर्ज होगी और वही पॉइंट्स फिर हमें ताकत देगी। तीसरा सत्संग है सीनियर भाई बहनों का सत्संग, उनके क्लासेस सुनो, उनके अनुभवों की, उनके साथ अनुभवों की लेन देन करते हैं, तो उससे भी बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिलती है, प्रेरणाएं हमें जीवन में मिलती है या? फिर चौथा सत्संग है वो है ऑडियो विजुअल सत्संग, जो ऑनलाइन देखते हैं ना, कितना सारा ज्ञान का मटेरियल है, पूरी ज्ञान की जैसे बाढ़ आ गई है, कितनी चीजें हम वो कर भी नहीं सकते, सारा नहीं सुन पाते हैं या? लेकिन जब भी टाइम मिले तो ये ऑडियो विजुअल सत्संग भी करते रहे, सुनते रहे, तो उससे भी हमें बहुत ताकत मिलेगी या? फिर उससे आगे चलते हैं तो दूसरा सत्संग है लिटरेचर का, जो बाबा ने हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर लिटरेचर मैगजीन्स वगैरह बनाया है, अव्यक्त वाणियां कुल मिलाकर के आप देखो मोर देन 1100 तो अव्यक्त वाणियां है या? इन सब का अध्ययन करते जावे तो उससे भी हमें ताकत मिलती जाएगी या? फिर उससे आगे चलते हैं तो कहते हैं स्थान के साथ सत्संग या? जैसे लॉकडाउन में तो हम लोग कहीं पर भी जा नहीं सकते थे, भारत में भी मैंने सुना काफी समय तक बंद था, विदेशों में भी हम लोग 2.5 साल तक कहां पर भी नहीं जा सके, हमारी बॉर्डर भी अभी अभी खुली लास्ट मंथ या? तो फिर 2.5 साल हो गया था, मधुबन भी नहीं आए थे या तो तब मधुबन की वैल्यू का पता चलता है, साल में 2-3 बार आते रहते ना तो वैल्यू का नहीं पता चलता, क्योंकि हम लोग देखो दौड़ते ही रहे, सेवा करते ही रहे। फिर बाबा ने एकदम सबको बिठा दिया कि अब सेल्फ सर्विस करो, बहुत दौड़े या तो ये बाबा ने हम बच्चों को टाइम दिया था। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, मन से स्थान की यात्रा करते थे, वहां बैठे बैठे योग में 4 धाम की यात्रा कर ली, अलग अलग प्रकार की ड्रिल्स कर ली, फिजिकली नहीं गए परंतु मन से हम उसी स्थान पर पहुंच गए। ये हो गया स्थान के साथ सत्संग। और लास्ट 7वां सत्संग है मनसा द्वारा जो करते हैं। कभी बाबा कहते ना, विश्व के ग्लोब पर बैठ जाओ मेरे साथ और विजुलाइज करो कि मैं विश्व की सारी आत्माओं को सुख शांति प्रेम की वाइब्रेशंस दे रही हूं। तो ये मनसा सेवा के द्वारा भी ऐसा सत्संग होता रहे। दूसरी पुरुषार्थ की बात बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में मुझे याद रखना है कि कभी भी हमारा स्वमान कम नहीं होना चाहिए, स्वमान सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट में बहुत बहुत हायर वाइब्रेशंस है, बहुत हायर प्रेरणाएं उसमें भरी हुई है, उसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, साधुवाद की भावना है या तो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसमें आप देखो कोई प्रकार का प्रश्न नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रकार का आप देखो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, बस एक ही चीज है वो है एक्सेप्टेंस, जो सीन मेरे सामने आ रही है स्वीकार करते जाओ, अपनाते जाओ, कभी भी उसमें मुझे आर्ग्यू नहीं करना है कि भई ये बात क्यों मेरे सामने आई, ये नहीं आनी चाहिए थी, ये गलत हो गया, ये वो हो गया। अगर हर चीज को देखो हम एनालाइज करते जाएंगे ना तो क्या होगा, हमारे दिमाग का पैरालाइज हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा फिर या इसीलिए बाबा ने लास्ट वीक की मुरली में बताया था कि बच्चे डॉट अप्लाई करो तो माया नॉट अलाउ, या 3 डॉट की बात बताई थी, मैं आज आपको 5 डॉट बताती हूँ। या जैसे आत्मा इस अ डॉट बिंदु है, बाबा इस बिंदु, ड्रामा भी बिंदु, 3 तो आप सबको पता है, या परम धाम जो हमारा घर है वो भी तो बिंदुओं का घर है ना, डॉट वर्ल्ड। या फिर बाबा कहते 63 जन्म में हमने जो भी हिसाब किताब बनाए है ना, सारे हिसाब किताब को सेटल कर 0 करना है। या तो ये 5 डॉट्स मुझे अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना है, तो उससे फिर कोई भी प्रकार का व्यर्थ मेरे अंदर नहीं आएगा। और जब भी व्यर्थ आवे तो याद दिलाओ कि ये जो व्यर्थ है वो स्मोक का काम करता है, जैसे कहां पर धुआं वो हो तो वहां पर आप खड़े नहीं रह सकते, सफोकेशन हो जाएगा, श्वास नहीं ले पाओगे। या तो मुझे याद दिलाना है कि ये व्यर्थ संकल्प धुएं का काम करता है, उस धुएं से मुझे अपने आप को फ्री कर देना है। व्यर्थ चीजें जो है वो एक प्रकार की बैड ऑर्डर है, बदबू का काम करते हैं। जैसे कोई के अंदर व्यर्थ संकल्प होते हैं तो क्या होता है, बहुत हैवी वाइब्रेशंस होंगे। आप देखो उनके नजदीक भी आप चले जाओगे ना, यू डोंट फील कंफर्टेबल, बहुत भारीपन लगेगा। या बिकॉज जो हम सोचते हैं हमारे संकल्प वो वाइब्रेशंस वातावरण में फैलाते हैं। जब भी व्यर्थ चले तो मुझे याद दिलाना है कि ये लीकेज का काम करते हैं, जैसे घर में थोड़ा भी लीकेज होता है ना, पानी टप 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 करता है, ये तो अच्छा नहीं लगता है ना। पानी का दुरुपयोग हो जाएगा और वो आवाज भी अच्छी नहीं लगती। हम क्या करते हैं, फटाफट प्लम्बर को फोन करेंगे और लीकेज को फिक्सअप करा देंगे, या तो उससे हमारा समय, शक्ति, एनर्जी, मनी सब बच जाएगा। तो ये जो हमारा व्यर्थ है वो भी लीकेज का काम करता है मेरे मन के लिए। इसीलिए जो भी मन में थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प का लीकेज होगा ना, तो ज्ञान बह जाएगा, ज्ञान अंदर में रहेगा नहीं। या फिर ये जो व्यर्थ हमारी अंदर चलता है वो कभी कभी फायर का भी काम करता है। जैसे जंगल में आपने देखा होगा कि वो बाम्बू ट्रीज जो होता है ना, क्लैश होता है, फायर हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित करता है। तो जिसके अंदर व्यर्थ चल रहा है वो पर्सन तो ऑलरेडी बर्निंग इन दैट फायर ऑफ एंगर, या उसके संपर्क में कोई आया तो उसके अंदर भी गुस्सा आ जाएगा, या तो ये गुस्से की अग्नि को जलाने का काम करता है। फिर ये जो व्यर्थ चीजें जो होती है ना, वो बाबा कहते हैं हमारी आत्मा का वजन बढ़ा देते हैं। नहीं, जब फिजिकली भी शरीर में भी बड़े कोई होते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। नहीं, आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स, हैं कि भाई वजन कम करो, उसके लिए डाइट पर ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, या प्रिस्क्राइब करते हैं ना ये सब चीजें। तो उसी प्रकार अगर मेरी आत्मा का वजन बढ़ गया तो हम उड़ नहीं सकेंगे, बाबा के पास नहीं जा सकेंगे, क्योंकि भारी चीज नीचे रहती है, हल्की चीज ऊपर उठती है। या तो जबी भी ये व्यर्थ चले तो ऐसे मुझे अपने आप को याद दिलाकर उससे फ्री हो जाना है, और फिर हम ये सुमान में रह पाएंगे, क्योंकि जहां स्वमान होता है वहां व्यर्थ कभी भी नहीं चल सकता। तीसरी बात बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं वो है श्रीमत। जो बाबा की श्रीमत है उसको मुझे एक्यूरेट फॉलो करना है, न मनमत को ऐड करना है न परमत को। तभी तो एक बार बाबा ने बोला था ना, तीन पर, उससे हमें फ्री होना है, पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन। ये तीन पर को काटने के लिए एक पर को याद करो, पर उपकार। या तो ये तीन से अलग हो जाएंगे, तभी तो बाबा कहते ना कि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। कौन पर चिंतन करता था, गॉसिप, याद करो किसका नाम मशहूर है, हैं? याद करो कौन करता था सबसे ज्यादा पर चिंतन, हैं? नारद करता था ना, हैं? हाथ में तो वीणा लेकर के नारायण नारायण बोलता रहता था, लेकिन आपस में लड़वाने का वो काम करता था। तभी तो बाबा कहते ना नारद नहीं बनना है, हैं? कई बार हम भी बाबा 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 करते रहते हैं, फिर अगर ये संस्कार है तो अच्छा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते नारद नहीं बनो, परंतु क्या बनना है, हनुमान बनना है। हनुमान के जीवन की तीन विशेषताएं थी, एक तो हनुमान डबल लाइट रहता था, मेंटली लाइट, स्पिरिचुअली लाइट। तभी तो आप देखो हनुमान को सदा उड़ता हुआ हम दिखाते हैं। दूसरी हनुमान की विशेषता थी कि वो बाल ब्रह्मचारी था, पवित्रता की उसके अंदर ताकत थी। और तीसरी हनुमान की विशेषता रही कि उसका एक राम से बड़ा गहरा प्यार था। नहीं, उसने अपना हृदय भी चीर करके बता दिया ना, अगर इस दिल में भी भगवान नहीं है इसकी कोई वैल्यू नहीं। या तो ऐसा हनुमान की तरह ये तीन विशेषताओं को हमें भी धारण करके उसके समान बनना है। या फिर उससे आगे चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि बार बार इस पुरुषार्थी जीवन में मुझे स्व चेकिंग भी करते रहना है, जिसके लिए मैं सुन रही थी है इंदिरा बेन आपको बता रही थी ना, अंतर का भी मौन, मन का भी मौन, तो स्व चेकिंग के लिए अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। एकदम अंदर में रही हुई आत्मा से मुझे बातें करनी है तो परमात्मा से भी बातें होती रहेगी। हमारे महाभारत में एक उदाहरण बताते हैं कि कहते हैं कि जब अश्वत्थामा को जब मार दिया था, एक्चुअली हाथी था या, तो बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया तो फिर महाभारत वॉर में उसका भी नाश हो जाता है या, तब उसका जो बेटा था उसका नाम था अश्वत्थामा, तो उसको पता चला कि मेरे बाप को कपट से मारा तो वो बहुत गुस्से में आ गया और नेक्स्ट डे महाभारत वॉर में उसने बोला कि मैं एक बहुत पावरफुल वेपन छोड़ने वाला हूं और वो वेपन था नारायण वेपन है, और ये इतना शक्तिशाली शस्त्र था कि एक बार उसको छोड़ो सारा काम तमाम करके ही वो वापस लौटेगा या? तो जब उसने वो शस्त्र छोड़ा तब कृष्ण थे पांडव आर्मी की साइड पर या, तो श्री कृष्ण ने पांडव आर्मी को बोला कि ये पावरफुल अस्त्र हमारे सामने आ रहा है या, आप सब लोग क्या करो, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, मन में युद्ध करने का संकल्प भी छोड़ दो, एकदम सरेंडर हो जाओ या, तो पूरी आर्मी ने ऐसे किया और धीरे धीरे वो जो अस्त्र नजदीक आता गया ना, ऐसे ऐसे वो पावरलेस होता गया। तो यही बात हमारे साथ भी हो रही हुई ना, ये कोरोना का पावरफुल वेपन आया ना, हम सब ने क्या किया, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर तपस्या शुरू कर दी। आज देखो वही वायरस पावरलेस हो गया है ना, अभी भी है भारत में कोरोना लेकिन इतना पावरफुल नहीं है, पावरलेस हो गया ना। तो ये सेल्फ चेकिंग ऐसे अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके मुझे बीच बीच में करते रहना है। उससे आगे चलते हैं तो इस ब्राह्मण जीवन में मुझे एम रखना है कि सदा खुश रहना है, कुछ भी हो जावे मेरी खुशी गायब नहीं होवे। नहीं, बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा था, भले शरीर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, खुशी नहीं जानी चाहिए। तभी तो उसके लिए बाबा कहते ना कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि उसमें सब प्रकार के न्यूट्रिशन है इस खुराक के अंदर। जैसे स्थूल में कभी ज्यादा खुराक खा लिया तो क्या होता है, है हमारी फेवरेट चीज कभी बनती है ना, थोड़ा खा लेते हैं ठूस ठूस के, फिर क्या होता है वो खुराक हमें ग्रीडी बना देगी या ज्यादा खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है ना, स्लीपी भी बना देती है। लेकिन ये खुशी का खुराक ऐसा है, जितना ज्यादा खाया उतना उतना अलर्ट बन जाएंगे, एक्टिव बन करके रहेंगे या स्लीपी ग्रीडी नहीं बनाएगा। ये खुशी का खुराक ऐसा खुराक है जिसमें सब प्रकार के विटामिन्स, सब प्रकार के मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, इज अ परफेक्ट फूड या। जैसे कभी कभी हमारा शरीर वीक हो जाता है तो डॉक्टर लिख के देता है ना कि सर्टन विटामिन्स आपकी बॉडी में कमती है, आप उसे लेते रहिए। तो मुख्य चार विटामिन्स बताते हैं, ए बी सी डी है, तो आत्मा को भी वही चार चाहिए या। और वो विटामिन्स की गोलियां कब खाते हैं, सवेरे सवेरे खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट के साथ या, तो ये भी सवेरे सवेरे ही खानी पड़ती है, है? तो विटामिन ए मींस आत्मा कॉन्शियस, आत्मिक स्वरूप में रहना है। विटामिन बी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं या तो बी माना बाबा कॉन्शियस, बाबा के साथ मेरा कनेक्शन होगा तभी तो पावर मिलेगी ना। विटामिन सी माना साइकिल कॉन्शियस, बाबा कहते ना स्वदर्शन चक्रधारी बनो, चक्र घुमाते रहो। विटामिन डी माना ड्रामा कॉन्शियस, ड्रामा की स्मृति में रहना है। फिर भोजन में भी आप देखो, हम खाना खाते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि इनफ स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या तो आत्मा को कौन सा कार्बोहाइड्रेट चाहिए? सेवा। ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते, सेवा डेफिनेटली उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो हमारी आत्मा का काब्स हो गया। या फिर आप देखो, शरीर को प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन नहीं दिया तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगा, या हड्डियां मजबूत नहीं बनेगी। तो हमारी आत्मा को कौन सा प्रोटीन चाहिए? है प्यूरिटी इज अ प्रोटीन, पवित्रता का प्रोटीन चाहिए। तभी तो देखो भारत में योगी को क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू गॉड, है क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य है भगवान जैसा बनना। विदेशों में इतना नहीं होता है, लेकिन भारत में तो बहुत रिगार्ड रेस्पेक्ट की दृष्टि से योगियों को देखते हैं। या फिर आप देखो, भोजन हमारा टेस्टी तभी बनता है जब उसमें मिनरल्स होते हैं, है स्पाइसेस, है और जितने स्पाइसेस हमारे भारत देश में है ना, उतने मैंने दुनिया के कोई कोने में नहीं देखे हैं। है कितने प्रकार के मसाले होते हैं हमारे भोजन में, या भोजन भी पूरा मार मार के खाते हैं, या पूरा डेड हो जावे तब नहीं, कुक कर कर के खाते हैं ना, तो उसका सारा अंदर का वैल्यू भी खत्म हो जाता है, फिर ऊपर से कितने मसाले डलते हैं। या तो उन मसालों से भोजन टेस्टी बनता है। तो आत्मा को कौन से मसाले चाहिए? तो दिव्य गुण है, वो मिनरल्स का काम करते हैं। जब दिव्य गुण हमारे जीवन में होते हैं ना, तो हमारा लाइफ एंजॉयबल बन जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। या तो इसीलिए ये कहावत कही गई है कि हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट, खुशी जैसा कोई खुराक नहीं। और ये कंप्लीट फूड कहाँ से मिलेगा ब्राह्मणों को? हेल्थ फूड वाले तो एडवर्टाइज करते हैं कि सर्टेन टाइप का फूड खाओ, ये कंप्लीट है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो हमारा कंप्लीट फूड कौन सा है? है बाबा की मुरली, उसमें सब कुछ आ जाता है, जो चाहिए सो। या तो ये न्यूट्रिशियस फूड खिलाते रहना है, तो इससे मेरी आत्मा हैप्पी रहेगी और हेल्थी भी रहेगी। क्योंकि अंदर से अगर हम खुश है ना, तो वो खुशी फिर हमारे चेहरे पर आ जाती है। कई बार आप देखो अंदर में बहुत हलचल होती है, हम उसको छिपाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारा चेहरा इतना इनोसेंट है, सब कुछ अंदर की बात बता देता है। या फिर लोग पूछते हैं कि भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है आज, नहीं पता चल जाता है लोगों को। तो इसीलिए ये अंदर की खुशी चाहिए, या तो फिर चेहरे पर वो खुशी झलकेगी। या फिर बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में मुझे ये भी याद रखना है कि सूक्ष्म में भी कहां पर भी अभिमान नहीं आवे। है आज की दुनिया में तो लोगों को कितने प्रकार के एरोगेंस है, कोई को देह का होगा, कोई को पैसों का होगा, कोई को पोजीशन का होगा, कोई को बुद्धि का होगा, कोई को ज्ञान का होगा, कितने प्रकार के अहंकार है। या लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि सूक्ष्म में भी मेरा कोई प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए। तभी तो बाबा ने तीन शब्द लास्ट में याद दिलाए थे, निराकारी, निर्विकारी और निर अहंकारी। या तो ये खास है इसीलिए बार बार मुझे ये चेकिंग करना है कि सूक्ष्म में भी मैं और मेरापन आना नहीं चाहिए, है? क्योंकि कई बार आप देखो कि इसको जीतने के लिए मुझे हम्बल बनना पड़ेगा, है? जितना नम्रता की प्रतिमूर्ति बन करके चलेंगे तो फिर ये अहंकार नहीं आएगा। या कई एक बार किसी भाई ने मुझे प्रश्न पूछा था कि क्या बार बार झुकते रहो, है? नम्रता में कहते ना झुको झुको, झुकते रहो, ये क्या हमारी वीकनेस नहीं है, ये कायरता नहीं है? मैंने उसको बताया कि ये कायरता नहीं है, ये महानता की निशानी है। झुक वही व्यक्ति झुक सकता है जिनके अंदर ज्यादा गुण होते हैं। हमारी दादी जानकी हमको हमेशा कहती थी कि देखो इसी दादी वॉज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो दादी कहती थी कि यज्ञ में मेरे भी 100 बॉसेस है, रोज मुझे कहते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, सुन लेती हूँ। या ये नम्रता हो गई। बाबा भी इतना बड़ा, कितना हम्बल, रोज नमस्ते करता है, है? ब्रह्मा बाबा में भी नम्रता का गुण था। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो नम्रता है वही सबको पसंद आता है। वो बताते ना उदाहरण कि वो जो कोकोनट ट्री होता है ना उसके ऊपर भी फल लगा होता है, नारियल होता है, या लेकिन कोई उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, झाड़ पे नारियल तोड़ नहीं सकता, अगर तोड़ने की कोशिश भी करे गिरा तो हड्डियां टूट जाएगी। या क्योंकि एक तो बहुत सीधा सीधा होता है और इतना आसान भी नहीं होता है, और कोई थका पका होगा वो व्यक्ति नारियल के झाड़ के नीचे नहीं बैठ सकता, उसको छाया नहीं दे सकता। इमेजिन करो अगर वो नारियल गिरा तो ये नारियल फूट जाएगा ना। मतलब अहंकारी व्यक्ति में आप देखो गुण होते हैं, लेकिन उनके वो जो गुण है ना किसी को फायदा नहीं देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैंगो ट्री है, आम का झाड़, ज्यादा फल लगे हैं, झुका हुआ रहता है। हमारे यज्ञ में क्वीन मदर थी, बहुत समय हो गया है, वो दीदी मनमोहिनी की लौकिक माँ थी, शील दादी की है। वो लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं करती थी, 3 बातें ही बोलती थी है कि अगर यज्ञ में सफल होना है तो मर मर, झुक झुक, सीख सीख, या ऐसे करके दादी 3 बातें पक्का कराती थी। या तो ये बात है कि सटल में भी वो अहंकार नहीं आवे, उसका मुझे ध्यान रखना है। या फिर उससे आगे चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि मुझे इस मार्ग में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। कुछ भी बातें आई, परीक्षा आई, कोई भी प्रॉब्लम्स आया तो मुझे नेगेटिव रूप में नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव रूप में लेना है कि भाई ये बात मेरे सामने आई है मुझे कोई अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए। या तो कई बार समस्याओं का चिंतन नहीं करना है, जो लेसन हम पढ़ते हैं उसका चिंतन करना है, ताकि दोबारा ऐसी परीक्षा आवे तो हम अपने आप को संभाल सके ना। कई बार आई थिंक हम सबका ये अनुभव है, कोई बातें आती है तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं, ड्रामा है ड्रामा है ड्रामा है, और अंदर चलता ही रहता है ड्रामा, अंदर में रुकता ही नहीं है, कहाँ फुल स्टॉप नहीं लगता है ना। तो इसीलिए थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, अटेंशन अपने आप को दिलवाना पड़ेगा। जब भी समस्याएं आती है तो हम सोचे कि ये समस्या मेरे सामने आई है, मुझे इंटरनली स्ट्रांग मजबूत बनाने के लिए है, ये परीक्षा मेरे सामने आई है मुझे अनुभवी मूरत बनाने के लिए। अगर हमें अनुभव होगा तो और कोई व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसी परीक्षा आई तो हम उसको अपने अनुभव के आधार से बोल सकेंगे, और जो बात अनुभव से निकलती है ना, वो दिल से निकलती है, और दिल से निकलने वाली बातें दिल को हीट करती है। या दिमाग से आने वाली बातें तो भूल जाएगी, दिमाग तक ही जाएगी, अंदर में नहीं जाएगी। या इसीलिए जो भी बातें हमारे सामने आती है ना, तो मुझे ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है कि भाई इसमें मेरा कल्याण है, इसमें मेरा भला है। एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत फेमस ये जूते बनाने की कोई कंपनी होगी या शू कंपनी, या तो इन्होंने अपने टू स्टाइल्स पीपल थे सेल्समैन, उनको अफ्रीका में भेजा है कि भाई आप अफ्रीका जाओ और वहां जाकर के खूब इसकी बिक्री करो ताकि कंपनी को फायदा होवे। तो ये जो दो सेल्समैन अफ्रीका गए, उसमें एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। तो जो नेगेटिव वाला था, उसने अफ्रीका में जाकर के देखा कि अरे यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, यहाँ कैसे बेचेंगे हम जूता। या तो उसने अपने बॉस को कांटेक्ट किया, बॉस को बोला कि इस देश में तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, हम यहाँ पर कोई प्रॉफिट इसका बना नहीं सकते, ये सारे जूते हम वापस कर रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति जो पॉजिटिव था, उसने भी देखा कि इस देश में जूते पहनते नहीं है, तो हम लोगों को एनकरेज करेंगे ताकि सिखाएंगे कि जूता पहनने से क्या फायदा होता है। या तो उसने अपने बॉस को बोला कि आप ट्रक्स लोड्स भर भर के जूते भेजो, या हमें बहुत सारे जूते चाहिए और हम बहुत सारा प्रॉफिट बना सकते हैं। या तो ये सेम सिचुएशन डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात हमारे जीवन में आती है तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि पॉजिटिव बन करके रहना है। जितना मेरा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा उतना मुझे अपने जीवन में फायदा होगा। नहीं, वो बताते अमेरिका में एक बार क्या हुआ था, एक कोई प्रिजनर था तो उसको वो फांसी की सजा हो गई। या तो फिर सोचा कि भाई इसको फांसी दे करके नहीं मारेंगे, किसी ने सजेस्ट किया कि इसको पॉइजन दे करके मारते हैं, है कोबरा के पॉइजन से इसको मारेंगे। तो उस व्यक्ति को बिठाया गया चेयर पर, फिर उसके सामने कोबरा को लाया गया, जहरीला सांप। या तो इसने देखा कि भाई सांप है, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। या फिर उसके बाजू में जो व्यक्ति खड़ा था उसने सेफ्टी पिन लिया, सेफ्टी पिन से दो बार उसको चुबाया। या इधर इस व्यक्ति ने सोचा कि कोबरा ने मेरे को डंक मारा। या तो जैसे उसने वो सोचा तो उसके अंदर से नेगेटिव संकल्पों के आधार से ऐसा हार्मोन्स क्रिएट हो गया जो कोबरा का पॉइजन और उसका पॉइजन सेम रहा और तुरंत वो मर गया। है तो कहने का ये भाव है कि जो संकल्प हम अपने मन में करते हैं वही संकल्पों के आधार से ये सारे हमारे इंटरनल सिस्टम काम करते हैं, हमारी ग्रंथियां काम करती है। इसीलिए मुझे इस ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए हर चीज को सकारात्मक रूप से लेना है तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा चलता जाएगा। और एक लास्ट बात है कि अगर पुरुषार्थ में सफलता पानी है तो हर आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। कई बार लोग तरह तरह का खेल करते हैं, कई बार हमारे सामने चैलेंजिंग पर्सनैलिटीज भी आती है, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय भी मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि भाई उसके प्रति भी अच्छी भावनाएं रखे। तो हमारी ये शुद्ध भावनाएं उनकी अशुद्ध भावनाओं को बदल देगा और वो व्यक्ति हमारा सहयोगी बन जाएगा। है कई बार हम सबके जीवन में ये बातें आती है, हम लोग भी अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग धर्म वाले लोगों से मिलते हैं, है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बातें आती होंगी। बहुत सारी परीक्षाओं के रूप में ये सब बातें आती है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को एक बात अच्छी तरह पक्की कराई है कि कुछ भी हो जाए हमें शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। चलो कोई शरीर में है तो उसके प्रति तो हम रख सकते हैं, परंतु किसी ने शरीर छोड़ दिया तो उसके प्रति कैसे रखे। एक सेंटर की बात मैं आपको बताती हूँ, एक बहन वहां पर रहती थी, अंग्रेज बहन थी। वो बहन का किसी क्लास में आने वाली बहनों के साथ कुछ कड़े हिसाब किताब होंगे, या तो इस बिचारी को हार्ड टाइम देते होंगे, या छोटी छोटी बातों में उनका थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाता था। तो ये जो सेंटर पर बहन रहती थी, एक दिन क्या हुआ कि सडनली उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, या शरीर छोड़ दिया। अब ये जो बहन सेंटर पर आती थी, जिसका उसके साथ संबंध ठीक नहीं थे, वो बहन मेरे को मिलने आई। फिर वो मेरे को कहती थी कि सिस्टर, वो जब शरीर में थी तब तो मेरे संबंध बहुत खराब रहे, अब मुझे अंदर में बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मैं क्या करूं, या अब तो मैं माफी भी नहीं मांग सकती, वो तो चली गई। तो फिर मैंने उसको युक्ति बताई कि अब वो शरीर में नहीं है, आपको माफी लेनी होगी, परंतु सूक्ष्म शरीर के द्वारा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि उसको फिर समझाया कि आप जब बाबा को याद करते हो, सूक्ष्म वतन में जाते हो, तो उस समय आप विजुलाइज करो उस आत्मा को भी सूक्ष्म वतन में, या फिर आपको उससे माफी लेनी होगी। तब आपके अंदर जो ये गिल्टी कॉन्शियस है ना, अंदर दिल खा रहा है, वो फीलिंग्स आपकी जाएगी, तब तक नहीं जाएगी। फिर उस बहन ने वो पुरुषार्थ किया थोड़ा टाइम, या आफ्टर दैट शी फेल्ट गुड ना। तो ये बात है कि चलो हमारी शुभ भावना शुभ कामना काम जरूर करती है, परंतु ओवरनाइट नहीं होता है, थोड़ा हमें धैर्यता की शक्ति धारण करनी पड़ती है, थोड़ी सहनशीलता की शक्ति धारण करनी पड़ती है, तब जाकर के वो शुभ भावना शुभ कामना हमारी वर्क करती है। या तो ये पुरुषार्थी जीवन की ये कुछ कुछ बातें थी, है, तो रिवाइज कर ले। वे कितनी बातें बताई, पहली बात बताई सत्संग, सात प्रकार का संग मुझे करते रहना है। दूसरी बात बताई स्वमान, जिसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन, कोई प्रकार की अपेक्षाएं नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन कर ले एक बार, है? पहली बात बताई सात प्रकार का सत्संग, फिर दूसरी बात बताई स्वमान, तीसरी बात बताई श्रीमत, नो मनमत परमत, चौथी बात बताई सेल्फ चेकिंग, अंतर्मुखी बन करके खुद की चेकिंग करना है, फिर पांचवी बात बताई ब्राह्मण जीवन में हैप्पी बन करके रहना है, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, या छठी बात बताई कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए, सूक्ष्म में भी नहीं आना चाहिए, या फिर सातवीं बात बताई सकारात्मक दृष्टिकोण, और आठवीं बात बताई शुभ भावना शुभ कामना। तो ये पुरुषार्थी जीवन में इतना करते रहे तो फिर ब्राह्मण लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे, कभी इस जीवन में हम बोर्ड नहीं होंगे और हमारी उन्नति होती जाएगी। ठीक, ओम शांति।
जो भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य बताते हुए दीदी ने कुछ पॉइंट्स समराइज किए और आप सभी ने नोट किए, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और हमारा मधुर वाणी ग्रुप पहुंच गया है आप सभी का स्वागत करने के लिए। बड़ा ही उमंग होता है इन भाइयों में। हमारे सतीश भाई तो 40 वर्षों से मधुबन में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हल्दर भाई और निरंजन भाई 20 से भी अधिक वर्षों से ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत हैं। तीनों को बहुत सुंदर गिफ्ट मिली हुई है। गीत लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं और गाते भी हैं। हर ग्रुप भट्टी का आता है, पूरा डिटेल मांगते हैं, कहाँ से आए हैं, कौन टीचर बहन हैं, वो सब गीत में इंक्लूड करते हैं और बहुत दिल से वो प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे बीच में पधारे हैं, हम सुनेंगे मधुरवाणी ग्रुप से स्वागत गीत।
ओम शांति। हैदराबाद सिकंदराबाद का जब नाम लेते हैं तो आदि के दिन याद आ जाते हैं। हैदराबाद से चलकर फिर हैदराबाद पहुंच गए तो आज संजीव रेड्डी नगर, मुंडा मार्केट सभी हमारे साथ में है। हम सभी मिलकर मधुबन वाले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सरोज बहन जी को विशेष बधाई देते हैं जो आपको यहाँ पर लेकर के आई हैं। तो एक बार दीदी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं।
हैदराबाद आया है, सिकंदराबाद लाया है। हैदराबाद आया है, सिकंदराबाद लाया है। देखते आपको दिन आदि का याद आया है। वो 14 वर्ष की भट्टी करने मन बनाया है। देख लगन में मगन आज बाबा हर्षाया है। आपके स्वागत में सारा मधुबन को सजाया है। आपके स्वागत में सारा मधुबन को सजाया है।
आप तालियां बजा सकते हैं, बहुत खुशी का दिन है।
नगाड़े जय जयकार, उधर दिखते नई दुनिया के नजारे। उधर है हाहाकार मचा, विनाश के बजते नगाड़े जय जयकार, इधर दिखते नई दुनिया के नजारे। सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाया है। हैदराबाद लाया है, सिकंदराबाद लाया है। संसार सरोवर में कमाल करती, संजीव रेड्डी नगर के संग मुंडा मार्केट संभालती। बहन सरो संसार सरोवर में कमाल करती, संजीव रेड्डी नगर के संग मुंडा मार्केट संभालती। करतल ध्वनि के स्वागत करते यहाँ जलाया है। हैदराबाद आया है, सिकंदराबाद आया है। करने से मन की मुराद मिल जाए, ऐसी करें तपस्या सबकी समस्या सब मिट जाए। मधुबन भट्टी करने से मन की मुराद मिल जाए, ऐसी करें तपस्या सबकी समस्या सब मिट जाए। वाह बाबा वाह बाबा सभी के दिल ने गाया है हैदराबाद, हैदराबाद आया है सिकंदराबाद लाया है, देख के आपको वो दिन आज का याद आया है। वो 14 वर्ष की भट्टी करने मन बनाया है, देख लगन में मगन आज बाबा हर्षाया है हैदराबाद, हैदराबाद आया है सिकंदराबाद लाया है, आपके स्वागत में सारा मधुबन मुस्कुराया है, आपके स्वागत में सारा मधुबन मुस्कुराया है।